कृष्ण प्रतिनिधि रहे केवल तो मथुरा में भी उनके भक्त हैं, द्वारका में भी भक्त हैं और जगह में भी उनके भक्त हैं। वहां भी इसको जाना पड़ेगा कि नहीं, ये कथान माम प्रपत्यं थे काम प्रचलित थे उन्होंने प्रतिज्ञा की। कुछ उनके कर्तव्य भी हैं जगत में, प्रेम का साधन करना है और प्रत्येक भक्तों के साथ में उनके लीला विलास इत्यादि हैं, किंतु फिर भी और भी तो कुछ कर सकते हैं। इसे अतिरिक्त कुछ बात नहीं हो गए, गोपियां जो रो रही हैं, तड़प रही हैं, तो मछली की भांति अब कृष्ण से रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, उनका चित्त भी अत्यंत संक्रमित हो गया और ये दृश्य देखा नहीं जाता। उन्होंने अपने को थोड़ा सा इशारा किया, सब न सके इसलिए, ऐसा नहीं कि वो क्रूर बन गए, सब नहीं दृश्य को देखने में वो अपारक हो, इसलिए उन्होंने इशारा किया। यहाँ पर कृष्ण जबकि वो भाव से प्रभावित होकर के प्रवृत्त हुए, किंतु बलदेव जी और अपूर्व के साथ में थे, इसलिए कहीं उन कृष्ण के इस हृदय जो उनका द्रवित हो गया है, ये दोनों न समझ पाए इसलिए क्या किया, चित्त द्रवित हो रहा था, मन अब रो देंगे, वो भी विलाप करेंगे दोस्तों की राशि, किंतु कर नहीं सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी विजातीय देकर के अपने भावों का संवरण करते थे, जैसे वो अढ़ाई ग्राम में जा रहे और शुक्र स्वरूप के साथ में रूप जी थे, महाप्रभु जी थे और साथ साथ में बल्लभाचार्य जी थे, बल्लभाचार्य जी हैं बाक्सर रथ के रथ, इसलिए वो मधुरस के भाव को नहीं समझते, इसलिए पी जाती है जगति प्रेमी है भक्त है कहाँ उन्नत बात करता रखते, कभी महाप्रभु जी उनके सामने गोपनीय रखा है। ये सब ब्रह्मा के लिए भी मुश्किल, उद्धव जी ब्रज में गए गोपियों का साथ किया, कभी गोपियों का यह भाव उनमें संक्रमित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उनकी दीक्षा शिक्षा की गई है, दीक्षा शिक्षा की जब तक कि ऐसा कोई न हो, ऐसा प्रेमिक हो जिसमें गोपियों का यह भाव हो और उससे दीक्षा शिक्षा न हो तो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा था, अपने माता पिता की सांत्वना के लिए नहीं, वो नहीं हो सकता उद्धव जैसे आदमी के पास, गोपियों को उद्धव जी के बातों से और साफ अधिक पड़ गया और मरने लगी, उद्दीपना होने लगी, इसके लिए जो गोपियों को सांत्वना होगी, माता पिता को सांत्वना होगी, इसके लिए नहीं भेजा। ये साधारण लोग जानते हैं कि माता पिता उनके अर्थों की व्यंजना ऐसी है कभी, जिससे कि साधारण लोग नहीं समझते, वो गोपियां ही समझते, या उस मंत्र में जो दीक्षित रहने वाले रूप गोस्वामी इत्यादि हैं जो साक्षरियां हैं वो क्यों समझे, तो इस विषय में जिनका संस्कार नहीं हुआ वो कैसे समझेगा। इसलिए उद्धव जी को भेजा, भी तुम्हारा संस्कार हो तब तो भी उद्धव जी को संस्कार होने पर भी ये नहीं हुआ, गोपियों की सच्चाई बन जाऊंगे, बस गोपियों की चरण दूरी के लिए कुसुम सरोवर में आज भी उनके चरणों की लड़की नहीं आया, तो ऐसे ही हो जाएगा। इसे अद्वैत वादियों का संग करने से, मायावादियों का संग करने से, या जिनको ये सचरी का भाव नहीं है, ऐसे लोगों के जिनमें वास्तव्य की भावना है उनका संग करने से ये नहीं होगा। जिसका सचरी गोस्वामी का ये भाव है वो होने से तभी इन चीजों को समझ सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उन भावों को विशाखा जी की सहायता के भी यह अवगम है। जलोधर में ऐसा लिखा, कृष्ण रथ के समुद्र है रथो वैचार, कृष्ण अनेक रथ है और एक रथ है, एक रथ में वो आत्मरथ का अनुभव करते हैं, सब रथों के जो विषय है कृष्ण उस विषय को के रूप में उनका साधन करते हैं। जसोदा मैया जी का बात चल लाड प्यार जो करती है उसको तो समझते हैं, क्योंकि जसोदा की जिस भावना से लाड प्यार करती है इसको नहीं समझते उनके अंदर में क्या भाव। गोपियां कृष्ण को प्रेम करती हैं किंतु किस भाव से राधा जी रोषित हो जाती हैं, कैसे उनको मान होता है कैसे उनका अनुराग होता है, माधव इत्यादि की दशाएं होती हैं, ये कृष्ण के लिए ये बहुरथ है। बहुरथ मैंने अपना आत्मरस और उन गोपियों का भावों का साधन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा जी का भाव उनके लिए अगम्य है, अपरिचित है, ये बहुरथ है। उन गोपियों के जो भाव है उनको नहीं जानते, ये कैसे होगा? उनके अपने जो मंदिर इत्यादि हैं, इस रस में जो विभाव चित्त वाले हैं उनके लिए होगा। अब विशेष करके जिनको गोपाल मंत्र नहीं मिला, जिसको काम गायत्री नहीं मिली, ये रहस्य सब है। इसलिए ये सब के द्वारा मंत्र की स्तुति से इन चीजों को समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता है। लाख जन्म लाख चेष्टा करें, जिनको ये भाव ही नहीं वो कहाँ से दे सकता है? उनके संग से नहीं हुआ, विद्वानों के संग से शब्दों का ये ऊपर का जो रूप अर्थ है वो मालूम होगा। उसकी अभी व्यंजना उसके भीतर में क्या छिपा है, ये अनुभूति का विषय है। केवल व्याकरण से अर्थ करेगा वो क्या बतला सकता है? एक आदमी गीता पढ़ रहा है और गीता पढ़ते पढ़ते रोता है, ज्ञान कैसे करता है? अनुसार विषय का कोई भी बात नहीं, ऐसे पढ़ता है रोता है। और पंडित लोग अनुसार विषय का उच्चारण करते हैं, बड़े भाग से पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं होता। महाप्रभु जी गए उससे पूछा, भाई आप गीता पढ़ते हैं पर रोते क्यों? बात क्या, मैं निरक्षर आदमी हूँ, मैं कुछ अर्थ नहीं जानता। मैं जब गीता सुनता हूँ तो देखता हूँ कि कृष्ण का अर्थ खड़ा है, पर कोई विषादग्रस्त और कुछ उनको समझा रहे हैं, ऐसे प्रेम भरी बातों से समझा रहे हैं, ये सुनकर के हमारा चित्र दर्दित हो जाता है, मैं अपने को रोक नहीं पाता। ये यही अनुभूति है। इन पंडितों को मुख वक्ता करने वाले स्वामी विचार इत्यादि का उनसे ये भाव नहीं आएगा। इसे यहाँ पर कारण है कि वो किसी प्रकार की गोपियां हैं अपने भावना को कोई ये पड़े कौन भी पड़े राधिका उसमें जो कम है वो अभी मूर्ति जैसी खड़ी है, चित्र रिश्ता मूर्ति की भांति, जैसे ये मूर्ति बढ़ी है ठीक भक्ति विनोद ठाकुर है सिद्ध बोल रहे हैं क्या नहीं, ऐसे मूर्ति की भांति जो मूर्तियां आगे बढ़कर से रथ को पकड़ लिया, उनसे कम उनकी अनुभूति है ना बिरस, इसे उसको पकड़ रही है और रो रही है, उनको होश है और उनको कृष्ण अपने इशारे के कारण आया से मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूँ कलकत्ता में, अभी जा रहा हूँ आज कल और कल मैं वहां रह करके काम समाप्त करके परसों में लौट आए थे। कई दोस्त थे मैंने जिनको होश था अपने वचन रूपी रूप से उनको कहा और वो जाकर के ललिता इत्यादि जो अभी चित्र लिखित खड़ी है या जो गिरी हुई पीछे जा करके वो कहेंगे कि कृष्ण ये बोल करके हमको गए हैं जो उनसे कह दो झूठा, क्योंकि अभी तो सुन नहीं सकती, वो तो एकदम दुखित है, इसलिए उनको कृष्ण कहने से भी काम जाएगा, काम ले जाएगा अभी तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनको कुछ होश है, जिसको कुछ विरह का ताप उतना नहीं है, जिनको माधन मुदन का भाव नहीं है, वो लोग कुछ सुनते उनको कृष्ण ने कहा कि बस मैं आज जा रहा हूँ और रास्ता से परसों में मुझे मैं जरूर लौटूंगा, ये नहीं कहा कि मैं परसों लौटूंगा, आयत से मैं आऊंगा। अब कृष्ण चले गए, ये भूल उड़ रही है, पहले रथ दिखा कृष्ण पीछे मुड़ करके उनके तरफ में देख रही दिखा भरी रहे जिन्हें की बैठा किसे समझाए, बलदेव जी को समझाए, नाथपुर जी को समझाए, उनकी जरा बता कौन समझेगा, जिन गोपियों के लिए कृष्ण का हृदय कैसे तड़प रहा है ये कैसे समझाए, क्यों नहीं समझा सकते? यदि वही अनंग मंजरी होती तो कुछ समझ जाते, बदल कर उसमें बासल जाता बस दास्य सख और बासल नहीं है, इसलिए ये नहीं समझ सकते इनके भाव, इसलिए बलदेव जी से नहीं कहा। अपूर से कहेंगे अपूर से अपनी आंखों को ऐसे पूछ लिए हूँ, छिपा करके पूछ लिए हूँ, एकदम बच कि हृदय उनका एकदम कैसा हो रहा है, आखिर दब दबाई है करके और गोपियों को गोपियां देख रही हैं, अब इनका चित्र द्रवित हो गया है, आ जाएंगे लौट, अभी जा रहे हैं ठीक से लौट, जब तक खड़ी रही जब की धूल दिखाई थी, धूल भी शांत हो गई, अब ये निष्कुट नहीं आएगा, हताश हो गई निराश। निराश होने के पश्चात वहीं पर बैठ गई हुई दूसरी गोपियों ने, क्योंकि और जिनको चना पीरा नहीं या फल वाले जो है आकर के किसी प्रकार के वो जिनको लेकर जा रहे हैं किसी के लिए कारण सा निराशा निर्दत्व तो गोविंद देवी बात। और जो गोपियां थी वो क्या हुआ, कृष्ण के विरह में तड़पते हुए वो गान करते हुए स्मृतिक हो गई, गोविंद छात्र के गिर गई, उसको होश नहीं रहा, कुछ चित्र की भांति गई, कृष्ण उनको उनका जो विश्वास शब्द ये कि आया के मैं आऊंगा आ रहा हूं, फिर उनको सुनाई पड़ा, किनको सुनाई पड़ा, जिनका हृदय गठित कुछ कम उन लोगों ने सुना, तो ये क्या हुई, जो सुन लिया क्या हुई, यही दौ ये दूसरे एक कृष्ण का वचन जो निकला वचन रूपी नाक को जली धूपी
मिलने
आप से ही उनका प्रणय हुआ, उसमें धूपी की जरूरत नहीं हुई, प्रणय हम लोगों का हुआ राधा जी का रहे, अब धूपी की क्या जरूरत है, अब फिर हमें ये धूपी क्या करेगी, इसलिए यहाँ पर निराशा ऋतु अब गोविंद अभी नहीं आएगा, किंतु सिंह आशा ले रहे क्या, कृष्ण कभी झूठे नहीं हो सकते, आज तक उन्होंने जितना वादा किया है सब पूरा किया, वो सतत प्रतिज्ञा धीर ललित नायक, धीर ललित माने नायक माने क्या, प्रति झूठ होने पर भी उसके प्रति बात को जो कहते हैं उसको पूरा, इसलिए ठीक है रामचंद्र जी ठीक है किंतु ललित नहीं है, कोई धीर उत्थक है
धीर शांत धीर
उद्धव, चारों प्रकार के नायक है धीर ललित धीर शांत धीर उद्धव
उदास, फिर अनुभवित,
इसलिए यहाँ पर कहते हैं एक क्षीण आशा लेकर, अब इस समय मैं गया था कोई और किसी और का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया किसी मैया, और मैया रोते रोते पागल है और कह रही कि हमारा बेटा मरा नहीं वो आएगा, ये क्षीण आशा है कि वो गया है अब वो आ जाएगा, आज नहीं तो कल जरूर आएगा, इसीलिए प्राण धारण कर रही कि तो लड़का तो गया है मर, उसको विश्वास नहीं हो रहा, कुछ लोग कहते हैं जैसे उस मरा लड़का तो मर गया, नहीं भाई वो मरा तो नहीं है, जैसे सुभाष चंद्र जी के लिए पेपर में आ रहा है सुभाष चंद्र मरे नहीं अभी है, अच्छा बताओ तो 100 वर्ष से अधिक की उम्र अब हो गई होती वो बड़ा है तभी एक फिर आता है ना, तो ऐसे ही यही अपने पीड़ा के लिए प्राण शांत के लिए वो क्या सोच रहे हैं, जब तक करते गए हैं आज तक उन्होंने वादा निभाया है इसलिए आएंगे, इसलिए उस समय तो कृष्ण चले गए धूल भी उठती हुई चली गई और नहीं आए, तो अब सोच रहे हैं जिससे वो जब गए किसी गंभीर कार्य के लिए तो कार्य को पूरा करके जरूर आएंगे, आए से जब कहा आएंगे, इसलिए घर को लाओ की अच्छा अब कल के लिए देखा रहे फिर कल का रही है अब आते होंगे, फिर देखे आज नहीं आया रात भर देखता रही देखती रही और कैसे उनके प्राण बच रहे हैं, प्रिय चेतन निन्नु गायन से अपने चेत कृष्ण के लीला से गायन करते हैं, तो क्या कठिन होंगी जस्यान रात नदी पर
तो बहुत
इत्यादि सब गायन करते हैं, गोविंद दामो देवी इत्यादि का ध्यान करते हैं, जैसे है ना कृष्ण रमण
श्रेष्ठ रमण कृपण आने सत्य दर्शन
ध्यान कर दे रही
हे देव देव
हे दई हे देव हे दई हे लीला कैसों का। रात में जैसे उनके साथ में हुआ, उनके आंकड़ों को पूछे, उनके स्तंभ बिंदुओं को पूछा, उनके मुंह के धूल को पूछा, उनके चरणों में नकुट पहना रहे हैं, सिठोरिया उनसे कर रहे हैं। क्या वो रात शांति दो ृतोदयम वीक्षण विहरण से मन कल जाता हूँ। ये सब चीजें को ज्ञान कर रही है कि कृष्ण कैसे हमसे सीख होगी और ये सब संस्कृत बातें कर रही और रो रही है और श्लोक बद्ध अपने आप कर रहे हैं। इसके लिए श्लोक और पद्य नियम को बनाना पड़ता, अपने आप सरस्वती के जीवा में, वो तो खुद सरस्वती का भी शास्त्र देवी श्रीमती राधिका है, ये अपने आप ये जो क्या है कि अभी कम व्यास में नहीं लिखा,
समाधि में देख करके लिखा,
समाधि में उन्होंने जो कहा है वो उसी को ये कर रहे हैं। इसे राधिका जी के मुख से या गोपियों के मुख से ये निकले, गोपी जी ये व्यास जी का दर्शित नहीं है, लोग समझते हैं ये भूल है, उन्होंने समाधि में ये सुना और सुन करके ये गोपी उनकी बहन भी ये गोपियों की जो बातें हैं ये सब व्यास की और किसी का लिखा हुआ नहीं, ये गोपियों के मुख हैं। उन्होंने समाधि में इसका अनुभव करके अवसरण किया सब लिखा, ये श्रीमद भागवत क्या है
समाधि
समझना। जो व्यास देव जी ने इसको लिखा, लिखा नहीं समझ किया उसको समाधि में सुना सुन करके उन्होंने कर दिया। तो विष्णु को अहनी निंदु गायन का किए थे, विष्णु को यहाँ सब था विष्णु मैंने तो कब तो गायक बोल रहे हैं, जब कृष्ण का गायन करती है और समझते हैं कि कृष्ण मिल रहे हैं, हमारे आत्मों को पोछ रहे हैं, हमें संतना दे रहे हैं कृष्ण अपने आंखों से, उसमें विष्णु का फिर वो मालिनी बन जाती है, अविश्वादनी भत्रिका बन जाती है उसी समय। कृष्ण है नहीं किंतु वो देख रहा था, देख रहे हैं उसे, ऐसे भाव अस्त शास्त्रीय विचार हुए हैं जो सब इत्यादि लोगों के लिए समझना भी कठिन है। कृष्ण भी कभी नहीं समझ पाते हैं कभी कभी, इसलिए फिर हमें उनके क्षेत्रों का ध्यान कर, इसलिए कभी कभी विशोक मालूम कर, जैसे उनको शोक नहीं किंतु ज्ञान कृष्ण थोड़ा सा बंद हो जाता है और सामने कृष्ण को नहीं देखती है तो फिर क्या हो जाता है, एकदम आग में तड़ में तड़ मछली से भी यदि भगवान अभी संप्राप्तो रामापुर जो रथेन वायु देवी नालीन जी अभिनाशी भगवान जी, भगवान को इसलिए कहा यहाँ पर बहुत मरते का विशेष भाव है, यहाँ पर कृष्ण गोपियों के भाव में विभाव होकर के मधुर रस को प्रकाश कर रहे हैं ना, किंतु ये मथुरा जा रहे हैं उनको भूल करके ये भगवत का एक ऐश्वर्य धाम की तरफ जा रहे हैं ना, जाना उचित नहीं था, वृंदावन बड़े को छोड़ करके गोपियों का प्रेम माता पिता का स्नेह छोड़ करके जाना संभव नहीं था, किंतु चूंकि भगवान है उनमें ऐश्वर्य भी भाव है इसलिए कंस को मारना चावल को मारना और सब पशुओं का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा भी करनी है आत्मधर्म, इसलिए उस समय में ये ऐश्वर्य आया या ऐश्वर्य भाव संक्रामित होने के कारण ही मथुरा जा रहे, इसलिए ये भगवान है। कभी यदि नंद पुत्र होते, गोपी कांत होते, राधा रमण होते तो जाते कभी, इसलिए उनके लिए कहा जैसे देखो ऐसा मत समझो वो भगवान जी उनके लिए तो और भक्तों के भी भाव देखे हैं ना, उनको ये भी देखना है कि कंस को मारना है, हमारे माता पिता जो ऐश्वर्य देवदास के लिए हैं हमारे बाधक हैं वो बेटियों हथकन में बंद हैं, उनके छाती पर चक्की रखकर के दाल पीसा जा रहा है, अपने पैरों के अंगूठे से उसे मारता है, अपमानित करता है, इसलिए हमारी इन्हें जरूर द्वारका में बहुत सी रानियों के साथ में विवाह करना है वहां पर, और तुम जैसे काल जमन है और जरासंध है तो चतुर्भुज कौन बना था उनका संहार करना है, वो बंदर बिल्ली इत्यादि का दंश करना है, ये तो ऐश्वर्य में लीला है, इसलिए उसको करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान अपि भगवान होते हुए भी वो जा रहे हैं। राम अपूर्तो झूठो यहाँ का राम है और अकुल, अकुल कौन राष्ट्र भक्त है? दास्य माने कौन? दास ब्रज का दास्य नहीं, ऐश्वर्य जीजू। इसे ऐश्वर्य जीजू की जो दास है उसके सामने ये मधुर गोपियों की भावना को मैं कैसे मैं रहूं और कौन सी गोपियों से मैं बहुत देर में आते हूँ ये कैसे कह सकते हैं? ये संभव बात बद्र जी से भी नहीं कह सकते। इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को कहा जरा से ही तरफ हम उसे कहा नहीं जाए बस आगे बाई देगे ना बाई दे तरफ उड़ने लगा कैसे भाषों के माध्यम से इस तरह से उधर गोपियां आकर के रस्ता चक्का का पहिए का चिन्ह दे करके कहीं पीछा ना पाए इसे कभी घासों से कभी इधर से कभी उधर से टेढ़ा मेढ़ा करते हुए बाई दे से लेकर के कालिंदी अपना आते नहीं कालिंदी ये कालिंदी मेरी जमुना है कालिंदी कालिंद पर्वत से निकलती है उनका पानी कैसा है? कृष्ण जैसा है। क्यों कृष्ण जैसा? गोपियों को नैनों में बचते हैं उनका काजल जमुना में भी था कृष्ण का अंग कैसा है? नील मणि के समान है। इसलिए उन अंगों का अंग राग भी जमुना में मिल करके नीचे से नील देखता है क्योंकि जब उठाएंगे तब कैसे एकदम उज्जवल दिखता है। इसलिए उज्जवल नील मणि के समान है। इन्हीं के आधार पर उसको समय में उज्जवल नील मणि रचना उनके भावों को ने? वो भाव क्या है? ये जो उज्जवल नहीं है जो भाव जो है श्रीमती राधिका के पीछे यही उज्ज्वल नहीं है। कृष्ण के लिए उज्जवल मणि है ऐसा नहीं, वो तो उत्प्रेक्षा में उनको लगा सकते हैं माने तुलना के लिए कृष्ण को नील मणि कहते हैं किंतु नील मणि है क्या? राधिका जी के कृष्ण के प्रति ये जो मदनाथ का और मातनाथ का ये स्वभाव ये उज्ज्वल नील मणि है। ये जसोदासी में कालिंदी भी नहीं ये कुछ संक्रमित हुए हैं उनके भाव इसलिए वो भी कालिंदी दिखती है कृष्ण जैसी है। कैसी है वो कालिंदी? अवनाश है अब को नाश करने वाली है अब मैं कृष्ण जी वहां पर पहुंचे और पहुंच करके क्या करें सत्रोपेश उपस्पृश्य संध्या पिता मृत मणि पर हम वृक्ष संडम अनुसर्ज सरामो रथम आविष्ट कृष्ण वहां पर रस्ते उतरे बलदेव जी के साथ और उतर करके पावनी जमुना जी के किनारे पहुंचकर शरीर आशीर्वाद शरीर का आचरण किया पान किया अपने अंजलि के पास और आचमन किया कैसे मृत्यु मंत्रण समस्त अवों को नाश करने वाली है ये कृष्ण ने सोचा आज गोपियों से देर नहीं करो ये दुख है ना तो दुख किस कारण से होता है? असत के कारण ये दुख होता है देह पाप ये तो होता नहीं तो यहाँ पर विरह जो दुख है ये पाप ताप के लिए नहीं होता किंतु इससे बहुत गुण अधिक प्रभावकारी है। इसने सोचा कि आज विरह में व्यतीत हो रहा हूं ये ताप जाता नहीं है मैं किससे कहूं किससे करूं कोई हमको संत न देगा ये जमुना से विदा ये राधा जी की शक्ति यदि इनका मैं स्पर्श करूं इनका पान करूं हमारा भी अर्थ विरह का जो ताप है ये कुछ प्रसन्न हो जाए। इसलिए उत्तर करके जमुना के पावन फूल पर उत्तर करके उनका जल पान किया और अपने इस पर छिड़का इसलिए हमारा ताप वो ताप क्या है कृष्ण का पिताजी तो साथ में है सखा लोग भी साथ में है इसलिए उनका विरह नहीं पीछे चलते किनका विरह जिनसे कहा जो तुम कह देना आए थे उनके लिए नहीं जो बिना प्रतीत होकर तुम वहां पर सच चाहते नहीं गिर गई निगम आसन होकर उनके लिए तो ये सोच रहे हैं कहो जमुना जी का स्पर्श से आसन से हमारा ये ताप दूर हो जाए इसलिए जमुना के किनारे बड़े बड़े सुंदर वृक्ष होती है पर सुंदर सुंदर कदम्ब के वृक्ष हैं सवाल वृक्ष हैं आम के हैं कदम्ब के हैं नीप हैं और उस तरह के हरे पड़े हैं इसे वृक्ष संघ संघ माने समूह वृक्षों से समूह से भरपूर ये जमुना है तीर रंग नरम हमारे वो कदम्ब गोपिता विद्य कदम्ब भा कदम्ब श्रीगंधवाकंद जन्मगंधरंदिनी मातृणा सरकार ऐसी ये योजना जी है शांति आई और वहाँ उत्तर करके जब वक्त करते हैं मालूम है कुछ हमारा हृदय था कुछ दुख उत्तर हुआ उत्तर करके राम के साथ में और फिर रथ में बैठे गए फिर रथ में बैठे किसी अपनों भी उतरे थे अपूर उपमंत्र निरीक्ष करो कालीन के हृदय माता स्नान
ठीक है
सर आकर अपनों ने क्या किया राम के अलग उनके साथ में उठ गए तो और उनके साथ में आसमान नहीं किया क्यों योग्यता नहीं है इस जगह पर थे वो उतर करके खड़े रहे दूसरा उनको भय है कि कोई शत्रु न आ जाए बाबासुर बकासुर कंस के जितने अंतर हैं उनको भय है कि मैं लेकर के आ रहा हूँ जब तक यहाँ पर मथुरा में न पहुंचा तो काम नहीं हो जाए तब तक बीच में कोई सी बात आ सकते कृष्ण बंदे के ऊपर में आक्रमण न कर सके इसलिए पहरा देने के लिए से पास में बैठे वो खड़े रहे उन पेड़ों की छाया में अक्र से जमुना में जाकर के बंदे जी आचरण किया फिर उनको कहा कि आप रथ में बैठिए मैं अभी आ क्यों उनकी सुरक्षा के दृष्टि रथ का धनुष बांधे और मथुरा जा रहे हैं ना अपू जी किस गए आए थे रथ में धनुष बाण अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के आए हैं साथ में कूड़ा भी है घोड़ों को चलाने के लिए तो वो वहाँ पर रखे हैं और दूसरी बात जमुना के किनारे में जहाँ पानी है वहाँ पर कीचड़ भी हो सकता है और हो सकता है कि कांटे कुछ भी हो विशेष करके ब्रज में कुछ ऐसे कांटे होते हैं जो दिखते नहीं है गोकुल वो पैर देंगे कपड़े में यहाँ से यहाँ तक फर जाएंगे छोड़ेंगे नहीं पैरों में यहाँ से यहाँ तक एकदम लग जाएंगे पतले पतले वो चूर जाएंगे वो निकलेंगे चूर करके उसी में रह जाएंगे हम लोग गुरु जी के साथ में सत्संग नहीं दे सकते इसे कोई कोई चप्पल कोई कुछ पहन लेते हैं
दुख काटा
किंतु ये भी समझिए ये कांटे जो पहुँचते हैं भीतर में ये आजकल एक प्रक्रिया करती है चिकित्सा की आंखों प्रेशर का कम करती है इसलिए तो उसमें जूते नहीं पहनते थे इसलिए कांटों का अपना विकास तो नहीं होता उसको निकालने से आंखों प्रेशर अपने ऊपर ये करती हो जाती है
पर गोकुल कांटे से मेरा घाव हो गया था
जलन होता है ना
जलन इसलिए खाली पैर तो थे जूता तो कभी पहनते थे इसलिए उनको रथ पर छाया नहीं देख के कहीं आप इधर से बैठिए और उनसे उपमन से मैंने उनसे आदेश ले करके मैं जम कर स्नान कर लूँ दो बात समय हो चलने का मुझे यहाँ का कार्य में कहाँ की ये बात है अब निकट आ गए हैं दो पार हो गया सोचा जी आप यहीं पर स्नान करके हम लोगों की विधि है भजन में तीन बात संख्या करने की स्नान करने की विधि है तीन बार महापुरुष तीन बार स्नान करते थे सवेरे दोपहर में और शाम को और सब कुछ में मंत्र करते ये नहीं कि दोपहर में जब फल आ गया ना फल आ गया प्रसाद का सब कुछ में प्रसाद को देख रहे हैं और अर्थात प्रादन भी कर रहे हैं और मंत्र कर रहे हैं इससे क्या होता है
सर्वधी
ऐसा ये सब विधि नहीं है पहले स्नान करके विधिवत आचमन करके तब फिर जाओ अचानक ये प्रसाद पाने के समय या रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब प्रसाद पाते हैं फल आ गया समय नहीं रहा तो उस समय डू यू थिंक मीट ऑफ टाइम एट ए टाइम ऑफ संध्या इन मॉर्निंग वेन सन इज गोइंग टू राइज यू कैन डू इट इन ब्रह्म मुहूर्त आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ सनराइज नॉट आफ्टर दैट If you are doing in bed and in the meantime when at about 12 when sun is on the head and in night when sun is going to say that there is some ready thing wait at that time you should do wrong. If you are neglecting the time you will neglect your soul जितने समय पर ये सब अनिक भी होना चाहिए इसलिए दोपहर में अपू जी उनसे आदेश दिया हमने जाऊं क्यों उन्हें ये भावना थी कि मैं इनका चाचा न हूं तो चाचा प्रेम से कहते हैं ये भगवान है तो भगवान का रूप था ये कृष्ण का नाम है ये भगवान है और ये राम कौन है अनंत देव है उनके आराध्य के भी आराध्य है ये इसलिए उनसे आदेश लेकर के निवेश से चारों को रथ पर जाकर के बैठे उन्होंने कहा कि आप जो बैठिए यहाँ कोमल गति है रथ के ऊपर में और नीचे कठोर भूमि है कांटे हैं गोकुए हैं छाया नहीं है यमुना के किनारे इसलिए छाया में यहीं पर बैठी है और वहाँ पर धनुष पानी के आदि अस्त्र है और वो लोग भी आ नहीं सकते कोई आक्रमण करने वाले आएंगे भी तो वो लोग कुछ कर सकेंगे प्रतिकार इसलिए बैठा करके काली व्याकरण महाराज का स्नान आकर कृष्ण से कर करके उतरे और जमुना के जहाँ पर घाट होता है तो घाट वहाँ था नहीं जमीन कुछ कटा हुआ उसके नीचे और थोड़ा था नीचे उससे और नीचे नीचे चले गए जमुना में उन्होंने स्नान किया आसमन किया प्रणाम किया जमुना जी को और विधवत आसन से स्नान किया विधवत माने क्या है फिर लगा करके और कूद रहे और तैरने लगे कुल फेंकने लगे ये सब नहीं आप लोग जानते हैं हमारे बक्रेश्वर पंडित को कि कौन से पुंडरीक विद्यालय दिन में कभी नहीं जाते थे गंगा तट पर या जमुना तट पर रात में जाते जब कोई नहीं होता किसी को जहाँ छट्टी कर रहा है किसी कोई कुल्लाउट कर रहा है कोई चुल्ला करते ऐसे जमुना में फेंक रहा है स्नान करते समय ऐसे ऐसे करते चुल्ला पे ऐसा मत करो उसी कृपा के लिए बस झट से एक या दो तीन जुटकी लगाई चले ये सब विधवा करना है आत्मा सर्वन को प्रणाम करो साष्टांग करें तब उनकी उनका जल यहाँ पर धारण करो ये यमुना जी कृष्ण की क्षति कृष्ण की क्रिया है ये कृपा करें हमें निमज्ज तस्मिन् सविधे जपन ब्रह्म सनातन आवेदते कृष्ण के अपूर्व रामकृष्ण समय यमुना में स्नान दुखी लगा करके पानी में देखा जप जपने लगे अपना कौन मंत्र ब्रह्म सनातन कौन ओम सहस्र सिद्धा
पुरुष
अनंत बस इसी का मंत्र जपने लगे
पानी में बैठे
जपने लगे सनातन ये सनातन पुरुष हैं कृष्ण जो रथ में बैठे थे जब ही दुष्टि लगाई और मंत्र जपते जपते देखा क्या अरे रथ से उतर सके हमारे जल में ही वो आ गए राम हो जैसे बैठे कैसे बैठे थे मुर्मू को सुखा नहीं और रास्ते में तो उनको सोने का मुकुट भी नहीं मिलेगा बंसी हाथ में सुखी नहीं और जो ब्रज के जो भाव थे वो तो मैया जसोदा के हैं या किसी सखी के यहाँ रखा है कहाँ पर इसे उस समय संत चक्र गदा पर मार या उसमें इसे भी कुछ नहीं ब्रज का भी भाव नहीं अभी आ रहे हैं तटस्थ स्थल पर ब्रज का यही भाव जो था यही पर छोड़ दिया और जल में उनके पास में पहुंचे किस रूप में देवी और वसुदेव के पीछे और वहीं के अपना रथ पर जो बैठे थे वो उनके भीतर उनको जो दर्शन दिया वो कौन थे वसुदेव नंद और नंद और जसोदा के जो पुत्र थे पर चले गए अलग थे रूप में अपूर्व जी के साथ में कृष्ण और बलदेव जी जो नंदन राम और जसोदा नंदन या राधा कांत हैं वो नहीं गए पर दुख की लगाई अब किसी बीच में वो लौट गए उनको पता ही नहीं चला और फिर पूरब पर आकर के देखा जब अरे वो तुम वहीं पर बैठे हैं और हमने किसको देखा ये कैसे देखा अच्छा तो हमने समावर कैसे देखा आंख में देने लगे कहीं हमने स्वप्न देखा जैसे आज हमने समय को ठीक ठाक नहीं स्वप्नों को संभा नहीं फिर उन्होंने क्या किया सावत दर्द के अक्रूर रामकृष्ण और समझ ले जाओ अंदर में देखा फिर बाहर में देखकर उठ कर खड़े हुए सौ रथक सौ खत्म ही कर रथ के ऊपर भी जब उतर के खड़े हुए और वहां से जरा ऊंचे पर फिर से बैठे थे इसलिए नीचे से उठ करके थोड़ा सा ऊपर दिखा वहां पर बैठे हैं तो ये कैसे हो गया कि रथ पानी के अंदर में दिखे और उदाहरण पर भी बैठे हैं तीन भक्त, ये कैसे संभव हुआ? बहुत सोच में पड़ गए, खाने या कुछ नहीं समझ सके। सुता आनंद दंडो है, आनंद दंडो है मैंने क्या, यहाँ आनंद दंडो है मैंने किसको कहते हैं, बस और इनके पुत्र को देखा तो जो नंदनंदन से थे जसोदा नंदन वो तो, और इसीलिए इस शब्द के द्वारा ये भी अपना है कि वो वहाँ पर जो जन्म देखा ये कौन था, और फिर वही निकल करके आप रथ पर बैठ गए, देखा जी वही रथ पर बैठे थे तो वो थे नहीं। पर ही सिर्फ क्षण चंदन मैंने रथ, अरे तब ये रथ पर कौन बैठे हैं, वो दिल्ली चले गए नस्तूल मध्य दर्शन देखे तो जल्द थी, ये क्या बात, फिर ड्यूटी लगाई और वहां आंख खोल करके देखा क्या, अब इस बार दूसरा चीज देखा क्या, आनंद देव को देखा अपने को जो पहले चीज का प्रयोग करते थे, प्रभु का शस्त्र फनाए हैं, सब देवता और सब जिनकी आराधना कर रहे हैं, श्री भूमि नीला इत्यादि जितनी भी शक्तियां हैं उनके समान देखा, यहाँ तक कि प्रहलाद जी उनको हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार इत्यादि कर रहे हैं, जितने देव आदमी हैं सब नमस्कार कर रहे हैं, आश्चर्य ये क्यों फिर देखा क्या, अनंत देव के गोदी में देखा, उसके भीतर में देखा वो श्यामल चतुर्भुज एक मूर्ति है, अद्भुत रूप चक्र गदा पद्म ना असंख्य सुंदर, गला असंख्य सुंदर, कपोल इतने सुंदर, चतुर्भुज रूप है, सोने के मंडप आभूषणों से परिमंडित है, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गई, क्यों ऐसा हो रहा, अब इसकी चर्चा हम बंधा गौतम कोई करने वाले की सुविधा।